इत्यादि के कारण उनके पर भी अंधकार का दिया पास्टिकी भी नहीं है। तो हमारे अनर्थ ये सब हैं, इसमें तो भोर रात में तो दिखते ही नहीं है, सवेरा होने पर भी अभी किसी किसी को दिखते हैं, किसी किसी को नहीं भी दिखते हैं। ये सब अपराध और अनर्थ है, हुआ रहा। इसलिए भगवान से प्रार्थना करने पर ये सब क्या है। अब तिथि जो पहर आया तृतीय ज्ञान, उसमें कुछ वैष्णवों का संग हो गया और उन्होंने कहा कि हरिनाम करो। अभी हरिनाम की कुछ उपलब्धि नहीं है, जो क्या है कुछ भी उपलब्धि नहीं। मान लिया कि विक्रमाजीत राजा है, नाम सुना है, तो वो कुछ बड़े दयालु स्वभाव से प्रजाओं पर दया करते, इसलिए देश बदल कर वो कभी राज्य में घूमने चले जाते। तो एक दिन एक कुटिया में गए और कुटिया में गए देखा एक बूढ़ा और बुढ़िया वहां पर। ज्यादा का समय किंतु कुछ भी तन ढकने के लिए नहीं, किस प्रकार से आग जला रहे हैं होता, बड़े कष्ट में। राजा गए, मुझे भूख लगी तो बहाना बना करके और अपने वैसे ही सज करके इतना दिन और जा करके कुछ है बड़ी भूख लगी। उन्होंने जैसे तैसे मोटी मोटी कुछ साग सब्जी मिला करके आटा मिला करके कुछ मोटी मोटी दो एक रोटी बनाई थी अपने लिए और खाने ही जा रहे थे, इतने में उन्होंने उसमें से उसको आधा दे दिया और आधा रख और उनको खिला। उन्होंने कहा विक्रमादित्य आप लोग इतना दुख कष्ट करते हैं, यहाँ के महाराज तो बड़े दयालु हैं, उनको आप लोग अपनी स्थिति सूचित क्यों नहीं करते। उन्होंने कहा मैं जानता, हम लोग जानते हैं राजा बड़े दयालु हैं, बड़े उपकारी हैं, सब कुछ ठीक, किंतु हम लोग उनको कष्ट देना नहीं चाहते। हम लोगों का तो किसी न किसी प्रकार से चले जाता है, तो उनको हम कष्ट नहीं देना चाहते, हम लोग अपना किसी प्रकार से। उन्होंने उस समय कुछ नहीं कहा और वो चले गए। सोच रहे हैं कि देखो इतना गरीब होने पर भी हमारी कैसी आवभगत है और कितने प्रेम से हमको खिलाया और कैसा आदर किया, अपना कुछ किताब किताब कंबल भी दे दिया उनको और उनके जहां तक जो कुछ हो सकता था उसके दुल्हन किया। राजा ने सोचा कि मैं कितना निष्ठुर और कितना ऐसा, जो हमारे राज्य में ऐसे भी लोग हैं जहां तक मेरी पहुंच नहीं है और मैं कुछ उनके लिए नहीं कर पा, बड़े दुखी होकर के लौट। और दूसरे दिन ताम्र पत्र पर लिख दिया कि ये राज्य राज्य की जितनी जो कुछ है आमदनी आज से उस बूढ़े और बूढ़ी को और हमारे तरफ से ये निर्दिष्टि रहेगी लोगों को जो इसको किसी प्रकार का कष्ट न होने। यदि एक राजा जिसको अंतर्जामी नहीं है कुछ भी नहीं है, यदि एक राजा अपनी प्रजा के लिए इतना कर सकता है तो ये भगवान के हम संतान हैं, संतति हैं वो, और अंतर्जामी हैं, हमारे मन की प्रत्येक भावनाओं को जानते हैं और हम उस प्रभु का नाम लेते हैं जान करके या अनजान में, तो वो कृपा नहीं करेंगे। इसलिए हराम यदि निकला है तो उसका संधि विच्छेद करके हार आम लगा दिया और बहाना करके भी उस पर दया, इसलिए भगवान दया करते हैं बहाना करके भी उस पर दया। इतने बड़े दयालु उनके समान और कोई दयालु भगवान की नाम की महिमा जितनी कहीं जाए वो कम है, किंतु ये आती है संतों की कृपा से समझ। बिना संतों की कृपा के उनकी कृपा क्या है, भगवान का नाम क्या है, भगवान क्या है, ये हम नहीं समझ। तो अब ये तीसरे प्रण में ये अनुभव होने लगता है कि मैं कहां हूं और भगवान कैसे हैं, ये कुछ कुछ समझ में आने लगता है। हम लोगों को अभी तक पता नहीं है हम कहां पर हैं, किस अवस्था में हैं, उनको पता है। अभी अंधकार है या प्रकाश है, यहां पर क्या है, अभी अंधकार दूर है, न भगवान दिखते हैं न जीवात्मा दिखती है, ना अभी अभी के लिए का अब उसका पीछे आ रहा। क्या अच्छा है क्या बुरा है हमको कुछ पता ही नहीं है, किंतु एक बात तो स्पष्ट है, जब साधनों का समय मिलने लग गया थोड़ा तब कुछ विचार शक्ति आ गई है। कैसे भी हम हैं, हम देखते हैं कि अपराध से अपूर्व जन्मों के पापों से हमारा चित्त इतना मलिन हो गया है कि भगवान सर्वत्र होने पर भी हम उनको नहीं देखते। आत्मा भी शरीर में है, मैं और मैं भी दिखाई नहीं, और शरीर को हम लोग मैं कर दुख भोग रहे हैं, अपमान प्रति क्षण क्षण में हम लोगों को मिल रहा है, बहुत दुखी भी हैं, अपनी परिस्थिति से कोई भी सुखी नहीं। इसको जो महात्मा कुछ लोग हो जाते हैं वो अपनी आत्मा को कुछ देख करके कुछ अनुभूति कर सकते, सभी लोग हम लोग अभी नहीं कर। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर स्थिति याम में, जहां पर हम लोग अभी पहुंचने जा रहे हैं द्वितीय, अब ये देखते हैं कि हमारी आत्मा की क्या स्थिति है। कोई चीज मीठी है किंतु वो लग रही है कड़वी, सब लोग कहते हैं ये मिश्री है मीठी, किंतु वो यदि कड़वी लगती है तो क्या समझना चाहिए, कुछ रोग है, ये सब लक्षण है। तो हम लोगों को भगवान का नाम मीठा है तब सात प्रकार है, मधुर मधुर अमे तत् मंगलम मंगला, किंतु हमारी स्कूल में रुचि नहीं हो रही तो क्या समझेंगे, जरूर कुछ है, जरूर कुछ गर्व है, ये हमारे पूर्व जन्म के अपराधों का। भगवान की कथा बड़ी मधुर है और कोटि कोटि पापों के जन्मों के पापों को भी झट उड़ा देने वाली, शंकाओं को उड़ा देती है, संशय विहग उड़ाव नहारी, संशय विहग, विहग माने चिड़िया, संशय रूपी चिड़िया को उड़ा देने वाली है। जैसे कोई चिड़िया बैठी है ना ऐसे बजाया और चिड़िया उड़ी गई, ऐसी भगवान की कथा है कि संशयों को भी, अभी हम लोगों में संशय, अच्छा ये महाराज जी सचमुच में अभी मध्यम श्रेणी के भी भक्त हैं कि नहीं, संशय है कि नहीं, अच्छा जी ये बातें कर रहे हैं ये अनुभव है कि नहीं, शास्त्र में इतनी बात लिख दी गई भक्ति करने से सब क्लेशों को दूर कर दे, हमारा इतना दिन हो गया भगवान का नाम लेते हुए क्लेश दूर हुआ, यह संदेह है कि नहीं। भगवान बड़े दयालु हैं, बड़े दयालु हैं, जानते हैं, सुना है सब तरह कि देखा सब तुम कि पाखी ऐसे से न बांधे, तो संदेह भगवान के नाम में इतनी सामर्थ्य है कि नहीं, यदि है तो हम लोगों ने इतना दिन नाम किया तो ये नाम की कृपा क्यों नहीं आ रही, हमारे दुख क्यों नहीं दूर हो रहे, हमारे अंदर में ऐसी शक्ति नहीं क्यों नहीं आ रही है, ए तू मर जा तो मर जा, हमसे कोई झगड़ा क्या, कभी तू मर जा
तो नहीं होता है।
अच्छा तुमको लड़का नहीं होता, अच्छा तुम कभी लड़का हो जाए, जब अभी समर्थ हो जाने तभी तो सब लोगों को मथुरा वासियों सबको क्या न कर दें। तो ये भगवान के नाम में समर्थ है कि नहीं, जब विचार करते हैं तो देखते हैं कि संदेह आ जाता है। ये सब क्या चीजें हैं, पूर्व पूर्व जन्मों के कुछ संस्कार अपराध इत्यादि कारण है, जो हम कहने पर भी समझ में नहीं आता, गुरु के वचन में विश्वास नहीं होता, शास्त्रों के वचन में भी विश्वास। तो इसलिए कह रहे हैं कि इन महाजनों को जो थोड़ा सा ऊपर उठ जाते हैं उनको ये चीज की अनुभूति होती है, और तब उसके लिए ये अनुताप करते हैं, हम लोग अनुताप का भी नहीं करते। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर जी नाम कर रहे हैं और मुकुंद माला स्तोत्र का अनुवाद करते हुए रिपेंट कर रहे हैं, अथवा जामुन भावावल। जामुन माने क्या, जमुनाचार्य। जमुनाचार्य कौन है, रामानुजाचार्य के गुरु। उसमें में वो अंतिम अलवा है, अलवा माने सिद्ध भक्त। कैसे भक्त हैं, जिसको जो कर देते हैं वही हो जाए। वो कहीं चले जाते थे भूत पिशाच जिसको लगा रहता था ना, तो अपने आप वहां से बात बात करते हुए भाग जाता था। और ऐसे वो थे जो अंतिम समय में जब जाने लगे, जब परलोक जाने लगे, तो उनकी तीन अंगुलियां ऐसे बंद थी। रामानुज वहां पर अंतिम समय में पहुंचे, एक अंगुली केवल थी और तीन अंगुली मुड़ी हुई। रामानुज आचार्य ने कहा कि मैंने इनसे भिक्षा नहीं ली, किंतु मन ही मन में तीन को गुरु बना दिया है, और ये हमें छोड़कर के चले गए। और उन्हें लगे विलाप करने, बोले कि गुरु जी को एक बार उतार करके हमें दिखाओ तो उनका मुख दर्शन करेंगे, उनका श्री अंग दर्शन करेंगे। तो वो भी रामानुज को बुलाने के लिए अपना एक भक्त भेज रहा था, वही विवाह करके इनको आ रहा था। तो रास्ते में हो गई भेद, उन्होंने कहा थोड़ा सा उतार करके हमको दर्शन करा, उतार दिया, उनका ऊपर का कपड़ा हटा दिया गया, उन्होंने उनको सस्तान प्रणाम। फिर देखा, देखकर कहते भाई सब अंग तो ठीक है, ये तीन अंगुली बंद क्यों है, इसका कारण क्या है। तो किसी से पूछा, किसी ने नहीं बताया। तो उन्होंने कहा कि गुरु जी की इच्छा से मैं अभी इनसे ही संन्यास लेता हूं। एक आने के साथ एक अंगुली खुल गई, अब दो ऐसे हो गई और दो ऐसे हो गई। उन्होंने कहा कि मैं वेदांत का वो ये है ना, किसके अनुसार में बुधायन, बुधायन आदि हमारे पूर्वपुरुषों के इच्छानुसार भक्ति मूलक मैं भाष्य पढ़ूंगा। बस साथ ही साथ में दूसरी अंगुली भी। अच्छा, उन्होंने कहा कि मैं वैष्णवी सदाचार का और उनके ग्रंथों का मैं सर्वत्र विश्व में प्रचार करूंगा। मैं ये तीन प्रतिज्ञा करता हूं अपने गुरु जी के सामने, ये हमारे गुरु जी हैं। बस वो भी खुल गए। तो वो उनके गुरु जी कैसे होंगे और ये रामानुज कैसे हैं, जिनके गुरु जी, जिनसे जब ये शिष्य का इतना बड़ा पता, तो वो गुरु जी जो है ना उनका कैसा पता, तो वो मर गए कैसे, ये संदेह हम लोगों को हो जाएगा। किंतु वो मरे नहीं, उस समय भी समाधि में हम लोगों के समझ में नहीं आएगा, बहुत कठिन चीज। तो ऐसे लोग अपने को किस प्रकार से भगवान के यहां अपने को दीनहीन मान करके और प्रार्थना करते हैं, भक्ति मनोज ठाकुर जी उसी चीज को ग्रहण करके कहा इस अतृतीय प्रकार के भजन, बिना बपी सुनिज तरोपी सही सुनना अमानिना मान देना, तब भगवान का कीर्तन ऐसे गुणों से युक्त होकर होता है। किंतु हम लोग ऐसा हो नहीं पाते, एक निज कपट नहीं हो पाते, सब समय कपट का हृदय में रहती है। भगवान किसी न किसी प्रकार से गुरु वैष्णव भी कहते हैं, किंतु उस कपटता को छोड़ नहीं पाते। इसलिए ये लोग प्रार्थना कर रहे हैं, न धर्मी निष्ठो अस्मि
न आत्मवेदी न भक्ति भक्ति नाम तत्चरणारविंदे अकिंचनो अनन्य गति शरण्य तत्पाद मूलम शरणम प्रपत्ते। ये यमुनाचार्य ने एक स्तोत्र सूत्र माने तो मैं बहुत दीनहीन हूं, हमारे समान अनन्य गति अब हमारी कोई गति दूसरी आपके अतिरिक्त नहीं है, न धर्म निष्ठोष धर्म में मेरी निष्ठा नहीं। धर्म कौन? पहला एक वर्णाश्रम धर्म और दूसरा है आत्मधर्म और तीसरा है प्रेम धर्म भगवान के प्रति। इन तीनों धर्मों में किसी में भी हमारी निष्ठा नहीं है, साधारणतः से वर्णाश्रम धर्म में ही मेरी निष्ठा नहीं। तो आत्मधर्म की तो बात है, आत्मा नित्य अजर अमर है, उसमें कोई भी पाप ताप अपराध कुछ नहीं है, वो सब समय निर्मल आत्मा है, ऐसी भी निष्ठा है। वर्णाश्रम धर्म माता पिता इत्यादि की सेवा इसमें भी तो रुचि नहीं, किसी चीज में भी अभी निष्ठा नहीं हमारी। और प्रेम धर्म जो है आत्मा का धर्म है भगवान की सेवा या भगवान के प्रति प्रेम, ये भी नहीं है। न धर्मनिष्ठ हो अश्मि न च आत्मवेदी, न आत्मा इत्यादि को ही मैं जानने वाला और न भक्तिमान, यही तीनों को अलग अलग बस बतला रहे। न भक्तिमान वही चरणार, तुम्हारे चरणों में हमारी भक्ति प्रेमा भक्ति भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। हम किंचन अनंत में मैं अकिंचन हूं। रामानु यमुनाचार्य जी अकिंचन थे, हम लोग अकिंचन नहीं है, पांडव लोग अकिंचन थे। पांडव लोग कैसे अकिंचन थे? उनका सब कुछ रहता हुआ भी उनका अपना कुछ भी नहीं था, एकदम अकिंचन उनका कुछ भारी। द्रौपदी उनकी भार्या नहीं, वो कृष्ण की प्रिय सखी। अभिमन्यु उनका लड़का नहीं, उनका वैभव। इस तरह से उनका अपना कुछ कहा जाने वाला नहीं था। अकिंचनो जिसका अपना कुछ नहीं, हमारा क्या? हमारी अभी लंगोटी है, अभी लंगोटी कोई दे ले हमारी तो देखिए जिसे क्या कर देता, अभी पहाड़ को भी तोड़ दूंगा उसके। यदि हमारा टूटा हुआ जूता कहीं ऊपर से घर में से कोई ले ले तो देखिए ये क्या हो जाएगा। रामानुज के शिष्यों ने रामानुज ने दिखलाया, रामानुज का एक शिष्य था वो शूद्र जाति का और बहुत से हजारों थे बड़े बड़े हमारे जैसे आप लोगों जैसे त्यागी, अंत में उन्होंने उसको अपना लिया, वो शरणागत हो गया, बड़ा गुंडा बदमाश जाति का किंतु उसको अपना लिया और एकदम वो बदल करके सचमुच में राजा हो गया, परम संत बन गया, किंतु गृहस्थ वेश में रहता। जबकि कावेरी में स्नान करने जाते तो ब्राह्मण शिष्यों के कंधे पर हाथ रख करके उतरते सीढ़ियों में, आज जब स्नान कर लेते तो
कंधे पर हाथ रखते,
वो अपना गृहस्थ भक्त जो शुद्ध था उसके रख करके। तो उनके शिष्यों ने कहा हम लोग पहलवान तो नहीं है जैसा ये पहलवान है, किंतु चार पांच आदमी पकड़ करके तो आप तो उठा ही सकते थे, तो क्यों नहीं आप हम लोगों के कंधे पर हाथ रख करके चलते हैं जो उस सूत्र के ऊपर में रख करके। पहलवान उल्टा टाइप का स्ट्रेंथ कहा जैसे ठीक है। उस समय कुछ उत्तर नहीं दिया, उन्होंने कहा कि आज गुरु जी को निरुत्तर कर दिया, गुरु जी कोई उत्तर ही नहीं दे सके, ऐसा प्रश्न हम लोगों ने किया। हम लोग भी ऐसे सोचते हैं, हाले आज के गुरुदेव
पानी
आज गुरु जी हमारे प्रश्न लागू कर दे सके, आज उनको मैं चुप कर, गुरु जी चुपचाप रहे अवसर देखने। एक दिन उन्होंने कहा उसी को शूद्र को जो था उसका नाम कोई नाम था
उसका
तो उनको कहा एक बात करो, हमारे शिष्य लोग जाएंगे स्नान करने, उनकी लंगोटियों को जरा फेर फेर कर देना, वो वहां पर तार पर टंगी है ना, तो अंतिम वाले को उधर में रख देना और बीच वाली को फिर उधर रख देना, ऐसे ही फेर कर दे बस, और कुछ मत कर, और अपने भजन में लग। तो वो लोग जब स्नान करके आए तो लंगोटी खोजने, अच्छा कौन लंगोटी ले लिया, वो कहता है कि हमारी उन लोगों की कौन, उनका जो हमारी कौन ले लिया, और परस्पर में झगड़ा, और वो झगड़ा इतना बड़ा कि मार पीट की नौबत आ गई। अब जब हुई तो रामानुज ने उनको, भाई ये लंगोटी किसने दी थी, तो आपने दी थी, ये लंगोटी तुम घर से ले आया था, तो नहीं तो घर से नहीं लाया, तो फिर तुमको लंगोटी दे देंगे, इसके लिए लड़ाई झगड़ा करने की क्या जरूरत है, इसमें तीन अंगुली चार अंगुली चौड़ी कपड़ा है, मैं अभी तुमको देता हूं, बस उन्होंने मंगवा कर, अरे भाई देखो तो इधर उधर देखो तो देखा तो उधर टंगी हुई है, उसका देखा उधर टंगी है, फिर लेकर के उनको दे दिया गया, फिर वो शांत। और दूसरे दिन उन्होंने अपने शिष्यों को कहा, ये अभी इसको मैं यहां पर हरि कथा में लगाए रखूंगा, और तुम इसके घर में पहुंच जाना, उसकी स्त्री सो रही होगी, उसका सर्वस्व चोरी करके डकैती करके उसको पकाना, इसके बाद जब तुम आ जाएगा हमको संकट दे देंगे हम, तब तुम खुद जाकर के अपने घर, तब इसको छोड़ेंगे, ये जाएगा। उसने उनको रामानुज ने उनको बातचीत में लगाए रखा हरि कथा के माध्यम से, और वहीं पर एकदम निश्चिंत होकर के रखे, 12 बज गया, छोड़ा नहीं। और इतने में वो लोग गए घर में, देखा कि उसकी स्त्री अपने पति के लिए प्रतीक्षा करती 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 लेट गई। तो उसने देखा कि हमारे गुरु भाई लोग आ गए, किस लिए आए, बड़े दुख के भी आ रहे थे, ये चोरी करने की नियत से आए, तो इन्हीं का तो है, बस वो जान बुझ करके सो गए। उन्होंने सब माल उठा लिया, जितने हीरे जवाहरात सब कुछ है सब ले लिया, केवल उसके हाथों में वो हीरे जवाहरात के ये सब थे कब अलंकार, एक हाथ नीचे करके एक हाथ ऊपर में सो, ऊपर वाला तो उन्होंने ले लिया, तो उसने सोचा कि ऊपर वाला ले लिया तो नीचे वाला भी ले लेते, वो थोड़ा सा बहाना करके ऊपर में आंख बंद किए हुए वहां करते ही घूमे, इतने सोचा कि इन लोगों ने जैसे उतर जग गई, बस उसी को अवस्था में छोड़ करके चले गए। रामानुज से सिग्नल दिया कि हम लोगों ने सब अच्छी तरह से सब चोरी करके और लेकर के चले। रामानुज ने कहा अब आप जाओ रात में घर में सोएंगे। वो गए तो स्त्री उनके लिए प्रतीक्षा कर रही थी, तो उन्होंने कहा तेरे हाथ में एक हाथ में अलंकार है दूसरे हाथ में अलंकार नहीं, इसका कारण क्या? तो उन्होंने कहा जैसे मैं सो रही थी तो आपके गुरु भाई लोग आए, देखा जैसे कुछ चोरी करने के लिए से, तो मैं आंख बंद करके सचमुच में जैसे सोते हैं वैसे सो गई, उन्होंने सब ले लिया और इसके बाद में हमारे हाथ का ऊपर वाले का भी अलंकार कर ले लिया, तो मैंने सोचा जैसे ये अलंकार तो निकाल लिया तो इस अलंकार को भी ले लें, इधर समय जरा घूम गई, इतने में वो लोग चले गए। शिष्यों को रामानुज ने कहा था जैसे घर में जाकर के क्या बात होती है, कैसे रोते और लड़ते झगड़ते हैं जरा देखा, गए तो देखा उनकी स्त्री रो रही, ये डांट रहे तुम हाथ को ऐसे ही करते करते ऐसे क्यों नहीं कर दिया, जो घूमने क्यों गई, इस तरह से करवट फेरने क्यों, तुम हाथ को थोड़ा सा ऐसे ही बढ़ा देती, वो बिगड़ रहा था, एक आदमी जिसे मुझसे थोड़ी सी टूटी हो गई, मैं इतना नहीं समझी, कल जैसे भी हो अच्छी बात हुई, हम लोगों को ये क्या करते, ये वैष्णव की सेवा में लग गया, वो लोग क्या करेंगे, वैष्णव भगवान की सेवा में या अपने सेवा में लगाएंगे, ठीक। रामानुज दूसरे दिन सब लोगों को बुलाया, देखो कहां ये और कहां हमारे तो ये लंगोटी के लिए झगड़ा करते थे, इसका सर्वस्व ये ले रहे हैं, लेकर के चले गए, उसके लिए ये लुकिंदा के और भी हमारा नहीं, इसको कहते हैं निष्किंचनत्व, भक्तों में ऐसी यदि भावना आई तब तो वो भजन कर, तो हम लोग एक एक पैसा भी छिपा करके यदि रखें तो उसे
भगवान की जरूरत है, न वैष्णव की जरूरत है, न गुरु की जरूरत है, उनको क्या जरूरत है। किंतु तुम्हारी ये जो वृत्ति है छिपाने की, चोरी करने की, रखने की, ये वृत्ति बहुत ये खबर है ठीक कर बस तो ये वृत्ति बड़ी खराब है। हम लोग इस वृत्ति को नहीं देख सकते। ये वृत्ति को देखता कौन है? जो भजन करने वाले थोड़ा सा ऊपर उठ गए हैं, वो अपनी इन वृत्तियों को, जो बुरी वृत्तियां हैं, और अनुमान लगाएंगे ये वृत्ति कैसे हुई पूर्व जन्म की, वो अनुमान कर सकते। हम लोग अनुमान नहीं कर सकते। एक विषय को विषय में खूब आसक्ति है, बहुत आसक्ति है, वो समझेगा। किंतु वैष्णव में जहां थोड़ी सी हुई ना, वो समझ जाता है और उसको दूर करने की चेष्टा। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर जी कहते हैं कि मैं अकिंचन अनन्य गति हूं, मैं आपके चरणों में शरण मैंने लिया, आपके चरणों में मैं शरणागत हुआ, आप हमारी रक्षा करें। इसलिए वो कहते हैं न निंदितम कर्म तदस्ति लोके सहस्त्रशो जन्म मया व्यधायि सोहम विपाक अवसरे मुकुंद क्रंदामि संप्रति अगति तवा प्रेम हे न दुष्ट कर्म नहीं जहां आमी करी नहीं सहस्त्र सहस्त्र बार करी से सब कर्म फल पे अवसर बल आमरे पीसी छे जत्रो परी गति नहीं देखी आर कांति हरि अनिवार तुम्हार जत्रते बेआमी जा तुम्हार हय मने दंड देहय किंचने तुम्ही मोर दंड धर स्वामी। ऐसा जगत में कोई खराब काम पाप काम नहीं है जो मैं दुष्ट उस काम को नहीं किया। सोच रहे हैं क्यों? हम अनुभव करें कि पूर्व पूर्व जन्म के इन पापों के वजह से ही भगवान का नाम लेते हमारे आंखें में अश्रु नहीं है, हृदय द्रवित नहीं था, ये जरूर हमने पाप। इसलिए वो कहा जहां भी करी नहीं सहस्त्र सहस्त्र बार सहस्त्र बार। इसलिए कपटता दंभ और भक्ति का ले कपटता लंब हमारे और भक्ति के प्रति नाम के प्रति तनिक भी हमारी रुचि नहीं। इसलिए मैं सोचता हूं कि हमारे अंदर में जरूर पाप है। अथवा भक्त महाराज जब की हिरण हुए तो उनको पता था कि नहीं जब मैं हिरण हुआ किस पाप से, उनको तो पता नहीं। वो जाति स्मरण भजन करते करते यदि ऊंचाई से कोई नीचे थोड़ा सा गिर जाता है तो पूर्व पूर्व जन्मों का पापों का उसको स्मरण होता है। इसलिए उनके सामने वो सब पाप प्रत्यक्ष दिखाई पड़ते हैं। जिस समय सूरत राजा, सूरत नाम का एक राजा चंडी में वो बलि देता था, पकड़े भेड़ जो थी उनको वो सब काटता था और यज्ञ करता था, अग्नि में स्वाहा करता था, घी के बदले घी तो दिया जाता और उन बकरों के, उन भेड़ों के, उन जीवों के, यहां तक कि मनुष्यों के भी मुंड उसमें स्वाहा कर दिए जाते। जब उसको स्वर्ग मिलने को हुआ तो सब जितने थे वो मरे हुए प्राणी सब उनकी आत्मा उनके सामने उपस्थित थी और काजी कहां जा रहे हैं? तो मैं जा रहा हूं स्वर्ग को। तो स्वर्ग भोग पीछे होगा, अभी जो हम लोगों को तुमने काटा है उसका जो पाप का फल है पहले भोग लो तो फिर पीछे, बस उसको मार रहे हैं, फिर जन्म होता फिर मारते हैं, फिर जन्म होता फिर मारते हैं। ये देख करके दृश्य एकदम उन्मूचित होकर के गिर गया। अब वो देख रहा कि हमने हजारों जन्म में या इस जन्म में जो जो पाप थे वो प्रत्यक्ष उनके आ रहे हैं। ये भी भगवान की कृपा थी इसलिए उनको अनुभूति। हम लोगों को तो अनुभूति होती नहीं जो हमने क्या पाप किए, जरूर पाप किए हैं, नहीं तो इस शरीर में हम लोग आ ही नहीं सकते हैं दुख भोगने के लिए, जन्म मरण का दुख नहीं होगा, इसलिए जरूर है। इसलिए वो कहते हैं ऐसे हमने कोई पाप कर्म नहीं है बचे जिसको सहस्त्र सहस्त्र बार मैंने नहीं किया, और फिर भी जन्म में जान करके भी पाप करना एक साधारण बात है, चोरी करना भी कोई हर्ज उतना नहीं होगा, किंतु गुरु जी के साथ में चोरी करना, बेईमानी करना, झूठ बोलना, उनसे कपटता करना, ये क्या हो जाएगा? ये तो अपराध हो जाएगा ना, उससे भी हम नहीं डरते, ये बड़ी बात है। उसी को स्मरण करके ये कह रहे हैं ऐसा पाप नहीं कोई जो मैंने शास्त्र शास्त्र कहा, इसलिए इसमें हम एक आदमी सारा जीवन सुख पाया हो प्राधान्य मानी रहा और अंत में मरने के समय में कुछ दिन पहले खाट पर पड़ गया, पानी नहीं पी सकता, कैंसर का रोग हो गया, रोग के लिए दवा हो रही है, मर्ज उतनी बढ़ती जाती है जितनी दवा होती है, करते 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 जो दुख नहीं भोगना चाहिए ना वो सब हो, क्या समझोगे? घर ही घर में तो जन्म हुआ, सब कुछ हुआ, कुछ कुछ भी काम नहीं आ रहा, इसलिए वो कह रहे हैं एक सब जब तक उसका प्रायश्चित नहीं होगा तब तक उसको भोगना पड़ेगा, वो सब आते जाएंगे क्रमशः और भोग भोगना पड़ेगा। हम सोच रहे कि है हमने इस जन्म में तो कोई पाप नहीं किया और ये सबको भोगना पड़ रहा है, भगवान भी ऐसे हैं कि हमने कोई पाप नहीं किया और हमको ये भोगना पड़ रहा है, तुमको तो पता नहीं किंतु हमको तो पता है, हमने भगवान को भी उसी में लपेट लेते हैं कि भगवान को भी पता है। से सब कर्मफल पे अवसर अभव हमारे पीछे छे जन्म रोपण दुर्योधन का पूर्व जन्म का कर्म का फल और उससे वो पहले सुख भोगा, क्या सुख भोगा? उनका राज्य भी जीत लिया और रो करके इनको वन से निकाल दिया, द्रौपदी को नग्न करके इसको अपमान करने की चेष्टा की, पूर्व जन्म का जो धन था वो और बढ़ता जा गया, पाप का फल और बढ़ता गया, तब तक वो जीत करके खूब आराम से ऐसे रहने लगा, पाप का घड़ा इतना भी भर गया, अवसर आने पर अबल दिखाया, कब बल दिखाया? जब युद्ध में भीष्म पितामह के पर्व में ही भीष्म पितामह कराते उनके 15 या 20 भाइयों को भीम ने पकड़ करके किसी का भुजा उखाड़ लिया, किसी का पैर खैच तोड़ करके तोड़ दिया, किसी का मुंड तोड़ दिया, किसी का कुछ किया, आरंभ हुआ। अभी दुशासन का आने वाला है, दुशासन समय में भीम ने क्या किया? उसको पकड़ करके गिरा दिया भीम और राक्षस जैसा चेहरा हो गया उनका और कह दिया मैं इसका हाथ उखाड़ता हूं, जिस हाथ से चीज खिंचाता है और उखाड़ करके दुर्योधन का भी जंघा तोड़ूंगा और तोड़ करके उसी के रक्त से और इनके भुजाओं के रक्त से द्रौपदी को यहां पर बुला करके और उसका केस बांधूंगा, पृथ्वी में जो कोई विपक्ष वाला जो कोई जी रहे इसकी रक्षा करूं, मैं सबको चाय ले लीजिए करता हूं, बस एकदम हाथ उठा करके उन्होंने कहा जो कोई जिसको आना हो दोनों दलों में, वहां पर कृष्ण है, अर्जुन है, भीष्म पितामह है और सब कर्ण इत्यादि है, सब लोग चुप हो। भीम ने कहा अर्जुन ने मैं अभी इसको देखता हूं, मैं अभी इसको भी एक बाण से मारूंगा, ये क्या कह रहा है और आपको भी चैलेंज दे रहा है, अभी तो इस दल में है, मैं अभी इसको मारता हूं, अजय चुपचाप बैठो कुछ मत करो, आज मैंने निसिंह का रूप का जितना हमारा बल था आज कोई किसम मैं भी इसे नहीं पार पाऊंगा, मेरा दिया हुआ ये बल से आज ये कह रहा है, इसलिए तुम चुपचाप बैठ जाओ। इस तरह से किस विषय में कह रहा था अब दुर्योधन का ये फल आ रहा है ना धीरे धीरे भोगने के लिए, अब 99 भाई मारे गए और वो बच रहा और उसको भी पीछे से पकड़ करके और उसका जंघा तोड़ करके उसको भी वंश में एक भी व्यक्ति नहीं रहा जो उसको दिया बत्ती जलाए या उसका सत्कर्म करे। फिर इन लोगों ने ही, पांचों पांडव ने ही उनका सत्कार किया। उसके बूढ़े बाप को इन्होंने ही पाला पोसा। ये सब कर्म फल है, पहले नहीं मालूम, बड़क मैं राजभवन बहन हूं है? और भी लोगों को अपने किस खुद्र खुद्र बातों के लिए लोगों को मरवा देता है। क्या क्या नहीं राजनीति में तो आजकल गंदी में देख ही रहे हैं, क्या आजकल धर्म नीति में भी ऐसा कर देता है। कहां भरत और रामचंद्र जी में देखो जी, उन्होंने अपना सर्वस्व छोड़ दिया, वो कहते हैं कि उनके लिए छोड़ दिया राज, वो उनके लिए राज। और कहां हम लोग, इसलिए भजन करने में ऐसा होना चाहिए, निष्किंचन दिन होकर के अपने पापों पर नजर, हम लोगों के पाप से ऐसा होगा। एक सब कर्म फल पे अवसर बल, अवसर करके फिर बलवान हो जाते हैं वो पाप पर, और जब जबरदस्ती भोगा लेते हैं उसमें बिल बिलाते हैं, भगवान को दोष देते हैं, अपने कर्मों का दोष देते हैं, दूसरों जो जो कर रहे हैं उनको दोष देंगे, उसने हमारे साथ में अन्याय किया, वो अपना ही ये फल है। गति नहीं यार देख यार, और कोई गति हम नहीं दे सकते, ये देखेगा भगवत भक्त लोग और दूसरा नहीं। गांधी हरी अनिवार्य, मैं अनुताप से रोता हूं और तुम्हारे चरणों में मैं शरणागत हुआ हूं। और तुम अपने मन में जो कुछ है, मुझे दंड दो या मुझे क्षमा करो, मैंने आप पर छोड़ दिया, ये अधिकार आप में है, ज्यादा छोड़ दें, पापों का दंड मुझे दें, अथवा आप छोड़ दें क्षमा करो। दंड देह अकिंचने, तुम्हें वो दंडधारी स्वामी, आप ही हमारे एकमात्र स्वामी, ऐसे कहकर के हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, और यही सब इसका भाव समझेंगे, भाव के द्वारा ऊपर से नहीं। निमज्जतो अनंत भवार्णवांत चिराज मे पुनर्विवासी लब्ध त्वयापि लब्धं भगवन् इदानीं अनुत्तमं पात्रमिदं दयाया। निज कर्म दोष फले पड़ी भवा नव जले हाबुदा खाई कत सताई सताई जाई सिंधु अंत नाही पाई भव सिंधु अनंत अपार। मैं अपने कर्मों के फल से पापों के फल न जाने कब से इस भवार्णव में भव सिंधु में पुनः पुनः जन्म और मरण के इस भव सिंधु अथा अनंत, कब से हमारा जन्म हो रहा है और कब तक ये जन्म मरण चलेगा और कब तक ये मैं पिताप में दग्ध होता रहूंगा, कोई भी आदि अंत नहीं, कोई भी आदि अंत नहीं। सताल सताल इस संसार में कभी कभी मैं तैर रहा हूं, तैर रहा हूं मैंने क्या, अभी मनुष्य जन्म मिल गया, यदि शुकर का जन्म मिल गया, बकरी का जन्म, तो बकरी को लोग, बकरे के लोग पालन करते हैं, पालन पोष करके मोटा बनाते हैं, देखते हैं कि अब इसके ऊपर में जरा चर्बी आ गई ना, तब उसको छट ईद आने वाली है, बस ईद बकरी के दिन में बड़े प्रेम से पालन पोषण करते हैं। इसी तरह से मुर्गों को और हर चीजों को भी हमारे जन्म हुए हैं, तो उसमें सतारना माने मनुष्य जन्म में कुछ मैंने चेष्टा की या कर रहा है, अब वो भी मन से नहीं करते हैं, तो सताई सताई जाई तुमको अंत नहीं पाई। सतारना माने क्या, पैर, तैरना माने क्या, कभी संसार के अच्छे अच्छे सब कर्मों को करता, कुछ दान करता, कुछ पुण्य भी करता, कुछ और काम करता, किसी की कुछ सहायता भी करता, स्कूल अस्पताल भी बना रहा, किंतु भाई ये कैसे हैं समुद्र में, जैसे एक आदमी डूब उतर आ रहा हो और बचने के लिए वहां पर एक तीर का गुच्छ वहां पर बहता हुआ चला जा रहा है, वो पुआल होता है जानते हैं, पुआल आपका सूखा खड़ तीन का वो बहता हुआ जा रहा था, एक सोचा कि इसको पकड़ने और कोई चीज है पकड़, उसी को पकड़ करके तो वो भी डूबा हो थी, तो ये तीन गुच्छ के समान ये है, दान पुण्य सनातन धर्म इसे हमारा वो भव सागर में पार नहीं लगा, वो भव तो वो भी लेकर के डूबे हैं। केवल एक ही उपाय है, भगवान का शरणागत हो और भगवान का नाम करें तो ये सुदृढ़तर नौका है। नौका तो पकड़नी नहीं पड़ेगी, जहां भगवान का नाम स्मरण किया वो नौका आपको आई और आपने देखा क्या उस पार बैठे में बड़े आराम के साथ में बैठी लोक में चले गए, ऐसा ये नाम है। किंतु ऐसे नाम के प्रति रुचि होती नहीं, गति नहीं देखी और मैंने देखा किसी प्रकार से हमारी गति नहीं है। कांदी 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 हरि अनिवार मैं बार बार रोता हूं तुम्हार अग्रेते बयामी जा तुम्हार भय मने दंड जो वो नीचे जाए निज कर्म दोष फले की भव हम उदारू खल का। कितनी बार मैं जन्म लिया मरण में आया सतार सतारी जाए तरते तरते मैं इन चीजों को पकड़ा और वो भी डूबा मैं भी डूबा। भव सिंधु अनंत विशा कब तक हम लोग को जन्म लेना पड़ेगा ठीक है वही थी। इतना पूर्व जन्म का अप्रारब्ध कर्म हमारा जमा है, प्रारब्ध कर्म से तो अभी हमने शरीर धारण और अपराध कर्म जो हमारे हैं इतने संचित हैं कि न जाने कितने ब्रह्मा जी की चौकड़ी और कितना क्या खत्म हो जाएगा, कभी पाप नहीं जाएगा वो इतना है। हम लोग बिजनेस करते हैं, मान लें कि कपड़े का बिजनेस किया, आज दिन भर में कुछ सेल किया और घर में गोदाम रखा है, यदि यहां का पूरा समाप्त हो जाएगा तो घर वाला लेते चलेंगे इसको भरते जाएंगे। घर में इतना माल है कि दो चार महीने पांच महीने दस महीने एक वर्ष का पूरा कपड़ा हमने पहले से लेकर के रख दिया है, जितना डिग्री हो फर्क कर दे किंतु वो भी समाप्त हो जाएगा। किंतु ये जो कर्म जो हमने किए हैं इतने अनंत है कि अनंत काल में जन्म लेने पर भी नहीं खत्म हो। बस एक ही उपाय है, यदि साधु संघ में भगवान नाम कीर्तन हो गया तो एक मिनट में वो जल करके बस चुटकी बजाने की भी देर नहीं लगेगी, ये सब पाप दूर हो जाएंगे। बस आते हम करें यही काले आई ले उसी समय में आप आए और आपकी पौधकुल भूमि उस समय मुझे एक सहारा मिला, किनारा तो नहीं है इस पास में किंतु मैंने आपका स्मरण किया और झट आप आ गए, तब मैंने देखा किनारा आपका चरण ही एक किनारा है और इधर में एक इधर वाला किनारा तो पता नहीं किंतु उधर वाला किनारा मिल गया आपका छत्तीस चरण आशा बीज भई जाना है। अच्छा तो नाम अब आ गया ना, गुरु जी ने कहा ये नाम हमने दीक्षा इत्यादि लेकर के नाम कर अब ये आशा की एक किरण जगी, अब हमारा भव सागर का एक किनारा अब ये दिखने लगा और पार हो गया। अब जब तक साधु संघ नहीं हुआ हरिनाम नहीं हुआ भगवान की कथाएं नहीं मिली तो समझो हम लोगों को एक आशा है मथुरा वृंदावन में किसी तरह से आ हरि कथा बिना पैसे की मिल रही है, बिना पैसे की बिना किसी प्रयत्न के मिल रही है, तुलसी जी भी मिल रही है, जमुना जी का दर्शन बिना चेष्टा के ही हो रही है और गिरिराज गोवर्धन पार्टी में इनका भी परिक्रमा लग रही है। वृंदावन में कभी सेवा तुम भी पहुंच जाते हैं गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन बिहारी इत्यादि जी के दर्शन होगा। कृष्ण इस गली में यहीं पर पासी में कंस को मारा होगा तो इधर में आए होंगे कि नहीं, इस भूमि पर कृष्ण के चरण पड़े होंगे कि नहीं। मथुरा में ऐसा कोई स्थान है जो 10-20 वर्ष कृष्ण यहां रहे तो उनकी चरण धूलि इधर उधर में कहीं नहीं लगी हो, ऐसा कोई स्थान है देखो तो कितना छोटा थी। किंतु यही एक आशा की झलक है जो हो सकता है हमारा कल्याण। कवि दया है पाइले मोरे सुनिश्चय सर्वोत्तम भाजन दया प्रभो आपकी दया किस पर होती है जो सबसे अधिक धन्य है पापी दया का पात्र वही है। हमसे खोजे आप जितना भी खोजेंगे हमसे जैसा नहीं और कोई योग्य पात्र नहीं मिलेगा ये कह रहे हैं कौन कह रहा है और उसके बदले में भक्ति विनोद ठाकुर जी का ठाकुर जी का क्योंकि उनकी उपलब्धि हमें उपलब्धि नहीं है इसलिए हमने ऐसा नहीं कर सकते हृदय से कहना हो
तुम्हें हरि दया मोर पाइले मोरे सु, आपने हमको कृपा के पात्र रूप में, सर्वोत्तम कृपा का पात्र रूप में हमको आपने पा लिया। और इस दया पात्र पर यदि कृपा पात्र पर दया न करेंगे तो फिर आप कहां जाएंगे। इसलिए मैं समझता हूं आप जरूर इस पर पात्र पर दया करें।
पवन तमेव अनुसरंत निरंतरम प्रशांत यशेत मनोरथंत कदाकांति कवित्य किंकर सही सनाथ जीवितम।
वही जमुनाचार्य जी का स्तर हरिनाम करते समय समय इसको समझो और इसको रिपीटेशन करो। नहीं आ श्लोक याद आता है तो अपने आप समझो, उपलब्धि करो जो हम लोग जीवित थे। और ऐसा करने से तभी हरिनाम का भाव तुम लोग समझ सको और हरिनाम शुद्ध रूप में आएंगे।
हमें बड़ा दुष्ट मत, मैं बहुत ही दुष्ट देखती हूं, ना देखिया अन्य गति, और कोई गति हमने जब नहीं देखा तो पद गई थी सर, मैंने आपके चरणों में हमने सर मैं आपका शरणागत
जानिया छे देना। मैंने हे प्रभु, मैंने अब इस समय समझ लिया। क्या समझा? तुम ही प्रभु जगन्नाथ, आप ही जगन्नाथ है, जगत के आप, जगत में मैं भी एक हूं, हमारे भी आप नाथ। हम ही पवन नित्य परिजन, मैं आपका नित्य ही परिजन। एक दिन कबे हो गए से दिन कबे हो गए एकांतिक भावे जबे नित्य दास भाव पावा अनु। मैं ऐसा दिन कब होगा जब मैं समझूंगा कि मैं आपका नित्य दास, हमारे हृदय में ये ठीक ठीक प्रतीति हो जाए। मनोरथान पर जब निश हो गए, हमारे हृदय में जितनी भी अन्य अभिलाषाएं हैं भगवान की सेवा करने के बदले अपने सुख की जितनी इच्छाएं हैं, क्या सुख की इच्छाएं, कितनी लाखों कोटि अभी इच्छाएं। अभी हम कहेंगे देखो तुम अपना घर बार सब छोड़ करके, सब कुछ छोड़ करके बस भगवान की दया पर निर्भर हो जाओ, तुमको भगवान कृपा करें। हम लोग नहीं ले सकते, नहीं ले सकेंगे, बहुत असंभव। तो समस्त मनोरथों को छोड़ करके सिवाय तुष्टि द्वार निकल आपकी मैं सेवा क्या कर सकूंगा, ऐसा कब हमारे लिए दिन होगा। अच्छा ये वचन जो है श्लोक है भक्ति विनोद ठाकुर के हम लोग पढ़ रहे हैं। अच्छा ये भगवान की कृपा है कि नहीं? भगवान की कृपा ये समझो कि हम नहीं चाह रहे तभी ये सुनने को आ रहा है, तो ये किसकी कृपा से हम लोग सुन रहे हैं? ये भगवान की कृपा है हम लोग सुन रहे हैं। और भगवान की ये कृपा करना चाहते हैं तो भी हम यदि कृपा न लेना चाहें, हम उसी में डूबना चाहें, कोई और दुर्भागा हम लोगों से कौन है। इसलिए इन चीजों को दूर करके भगवान की कृपा ग्रहण करना चाहिए। अपराध सहस्त्र भाजनम पतितं भीव भमार नमोदरे अगतिं शरणागतं हरे कृपया केवलं आत्मसातं कुरु। मैं बहुत ही अपराधी, ये भिन्न भिन्न श्लोकों को संग्रह करके ये दे रहे हैं। भजन करते समय इनको याद आती है और वही सब श्लोकों को पढ़ते चले जा रहे हैं और उसका बंगला में अनुवाद करते हैं और सवेरे उसको लिख रहा रखते हैं, फिर उसको अपने स्मरण के लिए उसको लिख करके रख। पीछे से श्रीलगत गुरु प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने इन चीजों को जब उनको मिली तो उन्होंने रत्न समझ करके उसको छपवाया, पहले शरणागति में इनको छपवाया, शरणागति भक्ति ठाकुर का है और उसी में परिशिष्ट के रूप में पीछे से इसको अलग करके छपवाया। नम्रिषा परमार्थमेव मे सुनु विज्ञापनम अरे अपराधी हूं सदा दंड दुर्लभ। मैं ऐसा कोई पाप नहीं किया जो कि नहीं मुझे करना चाहिए, सब पाप किया। मैं आपका सब समय दंड हूं, उन पापों का दंड भोगने योग्य हूं, सहस्त्र दोषों से मैं दोषी ये अनुभव करो। बात भी ठीक है, अनुभव किंतु करेगा वही जो भजन कुछ कर रहा है वो दूसरा नहीं करेगा।
भीम भवार नवे उदरे,
भीम भवा भव भवानो उदरे, ये कहते हैं संसार दुख जलविन पतितस्य काम क्रोधादि नप्त मकरै कबलीकृतस्य दुर्वासना निगृहीतस्य निरात्रयस्य चैतन्य चंद्रम देही। भीम भवानो माने ये भीषण, भीषण माने क्या, बड़ी बड़ी लहरें आ रही, एक तो आदमी ऐसे ही डूब रहा है और ऊपर से बड़ी बड़ी लहर और उसमें क्या बड़े बड़े
मगर
मगर मगर मच्छर जो कि ये मगरों को भी निकल जाए, यहां तक कि हाथियों को बड़े बड़े जहाजों को भी बीच में चीर देते हैं उलाट के, ऐसे क्रिमिनल एक मछली होती है, वेल एक मछली होती है जो बड़े बड़े जहाजों को, अब बड़े जितनी छोटी छोटी मछलियां मगर इत्यादि सबको वो जलों में कुछ सर्प होते हैं बड़े 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 भयंकर और वो हवा की गति से जल में चलते हैं। एक बार गोवर्धन में गया वहां पर बाढ़ हो रही खूब पानी, तो पानी जहां पर मैं रहता था वहां से निकल करके तब सड़क पर आना पड़ता, एक दिन निकल रहा था देखा जो 10-12 हाथ का हाथ का एक सांप और ऐसी तीव्र गति से हमारे पास झग निकल गया, मैं पानी में जा रहा था इतना पानी मैं हमारा प्राण संतुल आज तो बच गया और वहां तब तुमको निगल देंगे काटेंगे वो सब मर नहीं सकोगे, बीच का वेदना अनुभव होगा मरोगे नहीं, वो भोगायतम शरीर कहलाता, नरक में कोई मरता नहीं क्यों दुख वो करता है अनुभव करता है सब बार बार नए 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 दुख, आग में जला दिया जाएगा जलने का कष्ट होगा किंतु मरेगा। ऐसी स्थिति में मैं गतिहीन हूं, मेरी क्या गति हूं नहीं समझता, हरितो पाप द्वये शरण लई दुखये कृपा करी कर प्रभु आपके चरणों में मैं शरण में आया, आप कृपा करके हमको शरण दे, हमको आत्मसात कीजिए अपनी सेवा में हमको तुम्हार प्रतिज्ञाई शरण लई दीजिए। अरे आपकी तो प्रतिज्ञा है जो कोई हमारा शरण लेगा उसको मैं रक्षा करूंगा, ये जथन नहीं वही क्या सर्वधर्मान प्रत्यज्य माम एकम सर्वम प्रज अंताम सर्व पाप भोग मोक्ष श्यामी मास, ऐसे हाथ उठा करके प्रतिज्ञा करके भगवान कर हमारे शरण में आ जाओ, जैसा पापी तापी दुराचारी जैसा भी हो हमारे शरण में आ जाओ प्रभु मैं तुम्हारा हूं और आज से ऐसा नहीं करना मैं उसको शरण देता, तो प्रभु मैं ऐसे ही तो आ रहा हूं आप कृपा करके हमको आत्मसात कीजिए, प्रभु आप कृपा करके हमारा उद्धार कीजिए। ऐसा परमार्थने में सुनो विज्ञापन में एक अवगत यदि मैं न दवश्यसी तो दयनीय स्तवनाथ दुर्लभ, प्रभु मैं आपके सामने मैं एक निवेदन कर रहा हूं, क्या निवेदन कर रहा हूं, हे मधुसूदन, मधुसूदन माने संसार रूपी आसक्ति को काटने वाले और भक्ति रूपी मधु को देने वाले मधुसूदन, हे मधुसूदन, मधुसूदन किस लिए नाम पर आ गया था ना, एक दिन कहा था एक कहानी कही थी मधु, मधु नाम का एक कोई दैत्य था, उसने ब्रह्मा जी की प्रार्थना की आराधना की, उसने कहा जैसे हमारे जितने बंधु बांधव थे प्रभु ने मार दिया खत्म कर दिया, अब ऐसा हो कि जिसके ऊपर मैं हाथ रखू अंग किसी भी अंग पर तो वो तत्क्षणात मर गया, अब वो संसार में घूमने लगा और जो उसके विरोधी थे सबको मारने लगा, देवता लोग भाग गए सब, कोई भी उसके सामने नहीं टिका जैसे ये तो हाथ रख देगा और मर जाए, अंत में वो खुलता खुलता नारद जी को मिल गए, नारद जी ने कहा जैसे वो ब्रह्मा इत्यादि सभी भाग गए और कोई है हमसे लड़ने वाला, पर यहां कोई है तो वो तुम्हारा छक्का छुड़ा देंगे और तुम्हें अच्छी तरह से लड़ा देंगे, तो वो कहां रहते हैं? तो यही तो मुश्किल है, जो कहां रहते हैं उनका निर्देश नहीं है, तब तुम यहीं पर उनको स्मरण करो, बैठे तुम्हारे सामने आ जाएंगे, बस वहीं पर भगवान वहीं पर उपस्थित हो। या खोजते खोजते उनके रूप में गया और यहां पर नारायण के
बात करने के लिए कहा, वही प्रकट हुए
तो वहीं पर वो कहा कि मैं आपसे लड़ूंगा। ये लड़ेगा क्यों, हमसे क्या करेगा, तुम जैसा तो तुम्हारा ये धक्कर क्यों कर रहा है, डर के मारे जो तुम लड़ेगा तो ये डर जाता आदमी तो उसका हृदय धक्कर करता है, तो तुम्हारा हृदय तो धक्कर कर रहा है तो क्या लड़ेगा डर तुम, अच्छा मेरा हृदय नहीं धड़ता तो तुम देख रहे हो धड़कता है कि नहीं, मैं तो देखता हूं धड़ धड़ कर रहा। उसने उसकी मति को हर ली, उसने अपना हृदय देखने के लिए सचमुच में धड़क रहा है, हाँ कर रखा हो डर करके
खड़ा दवा दे बताया था।
ये मधुसूदन ऐसे मधुसूदन सुदाम कृपा पर माए निरर्थक कथा। मैं देखो प्रभु एक बात कहता, आप ध्यान से सुने, मैं ये बातें ऊपर से नहीं कह रहा हूं, कुछ कुछ लोग ऐसे ऊपर से कह देते हैं, कैसे गोपीनाथ मौनी में दान सुन ऊपर से कहें, विषय दुर्जन सदा भी कामेरत किछु नहीं मोर तुन, प्रभु हाँ अंदर में कुछ गुण नहीं, मैं तो विषय दुर्जन, ऐसा सुर से गाया जब देख रहे हैं दूसरों की तरफ में, वो आदमी आकर्षित हमारे कीर्तन से हो रहा है कि नहीं, इसमें लग और भीतर में कुछ नहीं अनुभव नहीं होगा, जैसे मैं पापी हूं आपके चरण में शरण लिया, स्तव स्तुति कर रहे हैं, किंतु इस स्तव स्तुति के अर्थ की तरफ में नहीं रुचि है, उनका स्वर से गा रहे हैं कि नहीं और दूसरे सुन रहे हैं कि नहीं, या हमारा ये काम पूरा हो रहा है कि नहीं, हमको यहां तक पूरा करना है यार, बस पूरा करने में है भावना कुछ नहीं, 100,000 नाम करना है, क्वालिटी की तरफ में ध्यान नहीं है, क्वांटिटी की तरफ में ध्यान, हमको हरे कृष्ण 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 हरे, इसमें 5 बार उंगली चली गई, 5 बार माला चला है, पूरा नाम नहीं निकलता, बस उसके तरफ भाव से करेंगे तब तो काम होगा, तो उसी तरह से करेंगे प्रभु, मैं आपसे झूठ नहीं बोलता, निर्वर्थ हूं, मैं अपने हृदय से कह रहा हूं यह बात, क्या गुणात्मय मैं सचमुच में अनुभव करके आपके सामने में ये सब सब बातें आपके सामने में कह रहा हूं, हृदय बन गया, मैं हृदय से कह रहा हूं, अति अपकृष्ट मैं हृदय से कह रहा हूं, मैं मूल से जैसा और नीच व्यक्ति हुई, मैं सबसे नीच हूं, परम दयालु हूं और तुम दयालु की अंतिम सीढ़ी पर सर्वश्रेष्ठ दयालु, और मैं पापी में जघन्य सबसे बड़ा पापी आने मैं मोरे दया कब अधिकार, मोरे दया कब अधिकार, हम पर दया करने का अधिकार आप पर है क्योंकि मैं आपका हूं, जे जत पतित है, जो जितना ही अधिक पतित है वो आपकी दया का उतना ही अधिक अधिकारी है, मैं निश्चित रूप में दया का सुपात्र हूं, सुपात्र अर्थात मैं सबसे अधिक पापी, जगाई मधाई है ते मुई से पापिष्ट, पुरुष रिकीट है ते मुई से लभिष्ट, मोर नाम जय लय तार पाप हो, आ मोर नाम जय सुने तार पुण्य खय, एमन निर्घिन्न मोरे के बाद कृपा करे एक नित्यानंद बिना जगत, सचमुच वो देख सुन करके कहा मुझसे पड़ा पापी और कोई नहीं है, जगाई मधाई से मैं भी अधिक हूं, पुरुष की माने मनुष्य के विष्ठा में जो कीड़े रहने वाले हैं उनसे भी मैं गया बीता हूं, मेरा यदि कोई नाम सुन लिया तो बंदरों के लिए कहता कि उसको उसको भोजन नहीं मिलता, तो वैसा नहीं हम मैं उसे भी गया बीता, मोर नाम जय सुने तार पाप, मेरा जो नाम सुनेगा उसको पाप होता है, और मेरा नाम जो लेता है उसका पुण्य क्षय हो जाता है, ऐसा मैं निर्गुण बस नित्यानंद प्रभु एकमात्र ऐसे दयालु है जो हमारे ऐसे नाम भी एकमात्र दयालु है, ऐसा सोच करके भाई भगवान का भजन करो, ये सब जो कुछ कर रहे हैं ये काम कुछ नहीं देगा, काम देगा वही मरने के समय में समझेगा भी नहीं समझ रहा, इसलिए घर के बाहर हो घर के भीतर हो जो जिस रूप में स्थान है स्थित अपने स्थान में रह करके भगवान का भजन, भगवान का नाम करो इसे बढ़कर क्या कोई भजन नहीं।
बस आज ही तक रहे, कल ये होगा। बहुत ही सुंदर ये सब चीजें हैं। ऐसे कहते हैं जो भी नाम करेगा ना तो कहते हैं भक्ति विनोद ठाकुर, यही रूप निष्ठा से और करी ले कीर्तन, ऐसे निष्ठा के साथ में कीर्तन करने से अचिरे हरी बे रुचि पावे, रुचि होगी और अंत में भगवान का। और ऐसा नहीं करोगे भगवान का भजन में रुचि नहीं होगी और प्रेम बंछा कर।
कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम
धारी। जय जय।